Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Dharmanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
So, Shvetashvatara Upanishad, ye chhathe adhyay ka chautha mantra. भाष्य थोड़ा बाकी था, पूरा कर लेते। पहले उच्चारण,
आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावाश्च सर्वान् विनियोजयेत् यः तेषाम् अभावे कृतकर्मणा सह कर्म क्षयाति सतत्वतोऽन्यः आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावाश्च सर्वान् विनियोजयेत् यः तेषामभावे कृतकर्मणा सह कर्म क्षये याति सतत्वतोऽन्यः
अब इस मंत्र में बता रहे हैं कि व्यवहारिक जीवन में हम लोग जो कर्म करते हैं, व्यापार बिजनेस या शारीरिक कृत्य जो है नित्य कर्म, तीन कर्मों का सदुपयोग कैसे करें, सदुपयोग को दिखा रहे हैं। प्रातः काल से लेकर के सोने तक जो हमारी शारीरिक क्रिया है, इसके बाद मानसिक क्रिया, मानसिक मतलब मन से सोचना, किसी के प्रति स्नेह है तो उसके हित की बात सोचते, अगर किसी से खटपट है तो सत्यानाश हो जाए, ये मानसिक कर्म है, इसको मानसिक कर्म बोलते हैं। आंख से देखते हैं, परिचित मिला, मित्र मिला, तो भी मन में अच्छी भावना, अच्छी बातें, और बातें करके निकलने के बाद भी सोचते हैं कि जब दूसरी दफे मिलेगा तो ऐसा कर बोलेंगे, और कहीं दूर से दिखाई दिया जिससे कुछ खटपट है, प्रतिकूल है, तो मानसिक कर्म कुछ और होगा कि भगवान करे इसका नाश हो जाए, ऐसा हो जाए, ये मानसिक कर्म है। तीसरा वाचिक कर्म है, अच्छा बोलना, मीठा बोलना, ये वाचिक कर्म। इसके बाद में जीवन यात्रा के कर्म है, जिसको कहते हैं व्यवहारिक कृत्य। कोई दुकान चलाता, कोई डॉक्टरी करता, कोई मास्टरी करता, कोई वकालत करता, यह है व्यवहारिक कृत्य। तो इन सब का सदुपयोग क्या है, इन सब को कैसे संपादन करें जिससे कि हम ज्यादा फायदा में रहें, फायदे वाली बात बता रहे हैं। तो इस मंत्र में यही बताया है कि कर्मों को कैसे करें, उनका नाता संबंध किससे जोड़े। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि, जितने भी कर्म हैं, कर्माणि देखिए बहुवचन है, वो व्याकरण जानते उन्हें पता, जितने भी कर्म हैं शारीरिक कृत्य, प्रातः काल उठकर मंजन बस स्नान आदि शारीरिक हो गया, इसके बाद भोजन पानी शयन आदि शारीरिक, वाणी से बोलना, मन से चिंतन, और व्यवहारिक कृत्य हो गए जो अपने जीवन यात्रा के लिए धन आदि का संचय आदि। इन सभी कर्मों को जो गुणान्वितानी गुणों से युक्त है, तीन गुण है सात्विक राजस तामस, तो तीन गुणों से जो कर्म है, इन गुणों से युक्त कर्मों को प्रारंभ करें। सात्विक कर्म का पहचान है मन में उल्लास, प्रसन्नता, ज्ञान, बुद्धि में रोशनी, ताजगी, निर्मल, इस सात्विक कर्म का पहचान। राजस कर्म का पहचान मन में लोभ लालच होना, ये राजस कर्म का पहचान। और तामस कर्म का पहचान है चित्त में उद्विग्नता, चिड़चिड़ापन, कलह, निद्रा, आलस्य, ये तामस का पहचान। इसको ब्रह्मलीन परम पूज्य खंडानी महाराज के वचनों में आपको बताता हूं। उन्होंने कई दृष्टांत दिया बहुत छोटा समझने के लिए। एक बड़ा अच्छा आदमी जंगल में भटक गया। भटकने के बाद बेचारा इधर उधर सोचा, नगर जल्दी पहुंचूं क्योंकि शाम होने वाली है। जब आगे बढ़ा तो तीन खूंखार बड़े दबंग आदमी मिल गए। तीनों में से एक आदमी उसको पकड़ करके बांध दिया। दूसरा आया, तुरंत चाकू निकाला और कहा, तुरंत इसका सोना चांदी गहना जेवरात जो भी है माल पाने लूट लो और लूट कर मार दो, नहीं तो दूसरे को बता देगा, हम पकड़े जाएंगे। इतने पीछे से तीसरा आ गया, बोला ठहर जाओ, कुछ नहीं करने का, ये बड़ा अच्छा आदमी है। और स्वयं ही रस्सी को खोल करके और उसको साथ लेकर नगर तक गया। और जंगल के सरहद सीमा पर जाकर कहा, भाई अब तुम जाओ, मैं यहीं से वापस होता हूं। उस आदमी ने कहा, क्यों वापस जा रहे, आपने तो बड़ी भलाई की। उसने कहा कि मैं हो तो चोरी ना, पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए तुम अब सुरक्षित जगह पहुंच गए, आराम से आगे की यात्रा करो। तो ये जो बांधा था ना, वो है रजोगुण। तो रजोगुण लोभ से, लालच से, जिसको आप फायदा कहते हैं, कहते ना इस काम को करें क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा। ये कई लोग के कई प्रकार हैं, क्या लाभ, क्या मिलेगा, क्या फायदा, इससे हमारा क्या मतलब सिद्ध होगा, ये रजोगुण का पहचान। वह आपको बांध देता है। जैसे रजोगुण बांधा, अब आ गया तमोगुण, हथियार लेकर बोलता, बस जल्दी से निकालो जो भी कुछ है, अन्यथा मार डालूंगा। जब भगवान की कृपा होती है तो सत्वगुण आता है, कहता छोड़ो ये परिचित अच्छा आदमी, और आपको भगवान के दरबार तक पहुंचा देता। और उसके आगे तो निस्त्रय गुण्य तत्व है, वहां सत्वगुण का ही पहुंच नहीं, स्वयं यात्रा करनी पड़ती। तो हमारे जीवन में तीनों गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण हमको लोभ लालच से बांधता है, तो तमोगुण निद्रा, आलस, प्रमाद, कलह, इन सब से हमें व्यथित, मारने के समान पीड़ित करता है, दुखी करता है। सतोगुण आता है तो जरा भजन ध्यान के द्वारा परमात्मा के द्वार तक पहुंचाता है। तो तीनों गुणों से युक्त हम जो कर्म करते हैं उनको क्या करें, कहते भावान सर्वान विनियोजयति। अच्छी भावना से, ईश्वरीय भावना से, मतलब ईश्वर प्रत्यर्थ भावना से समर्पण करे। तेषां भावे, जब आप ईश्वर में सब कुछ समर्पित कर देंगे तो कर्मों में कर्तृत्व का, स्वामीपने का भाव हो गया। चाहे कैसा भी कर्म हो, सात्विक, राजस, तामस हो, कर्तृत्व का भाव हो गया। कृत कर्म नाश, उन कर्मों का नाश हो गया, किए गए कर्मों का नाश। फिर कर्म क्षय, कर्मों के क्षीण होने से सयाति तत्व, तो वह तत्व को याति मतलब प्राप्त कर लेता है। भाष्य देखिए, आरभ्य कृत्वा कर्माणि गुणै सत्वादिभिः अन्वितानि भावा चत्यन्त विशेषान विनियोज ईश्वरे समर्पयेत। साफ लिख दिया कि जो हमारे जीवन में सात्विक, राजस, तामस कर्म हैं, सात्विक कर्म प्रातः काल हमने उठा, संध्या वंदन, स्वाध्याय, सत्संग सात्विक हो गए। इसके बाद राजस कर्म हो गए, जो व्यापार बिजनेस जो भी करते हैं, थक जाते, थकने के बाद जो प्रमाद आलस आता है या चाहे अनचाहे में जो कड़वी बातें जबान से निकल जाती, न चाहकर अनिष्ट चिंतन कर लेते, न चाहकर किसी को हिंसित कर दिए, ये प्रारब्ध वेग से जो हो रहा, इन सब का परमात्मा में समर्पण करे कि यद्यत कर्म करो में तत्तद अखिलम शंभो तबाराधनम। शंभो का अर्थ सभी देवता होता है, शंभो का अर्थ केवल शंकर भगवान ही नहीं। श्री महिमन पर एक बड़ी सुंदर व्याख्यान संत कीर्ति का है, मसूदन सरस्वती की टीका। उस श्री महिमन के मधुसूदनी व्याख्यान में दोनों व्याख्यान है, शिव परक भी है और विष्णु परक भी, उसका नाम है हरिहर व्याख्यान। इतना स्वाभिमान था मधुसूदन सरस्वती को कि अंत में उन्होंने श्राप दिया है श्लोक से, जो कोई हमारे इस अनुवाद का नकल करके चुरा कर दूसरा बनाएगा ना, उसका अनिष्ट होगा, बड़ा श्राप दिया। इतना दिव्य व्याख्यान किया। तो शंभो शब्द का अर्थ विष्णु भी होता है, शंकर भी, कृष्ण भी, राम भी, देवी सब हो जाता। कैसे होता है देख लो, शम बोलते हैं कल्याण को, समन को। तो सभी अपना कल्याण चाहते, शांति चाहते। और भू धातु का अर्थ भवति इति भू, शमम भवति इति शंभु, अर्थात जो अपने सभी दुखों को दूर करके कल्याण की कामना करते हैं ना, जो कल्याण प्रदान करने वाले, ऐसे का नाम शंभु है। तो भगवान विष्णु भी ऐसे ही है, भगवान विष्णु को उपासना करते हैं आपके सारे दुखों का समन करके और आपका कल्याण करते हैं, ऐसे कृष्ण भगवान, राम जी, हनुमान जी, दुर्गा जी सभी करते। तो ये जो कर्म है, यद्यत कर्म करो में तत्तद अखिलम शंभो तबाराधनम, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, राज, सात्विक, तामस, सभी कर्मों के द्वारा मानो परमात्मा की आराधना हो रही। इस प्रकार की भावना से कोई कर्म करता है तो उस कर्म का संबंध इस शरीर के साथ न होने से अब वो बांधेगा नहीं। परंतु यदि हम चालाकी से उस कर्म का संबंध अपने से कर लिए, बढ़िया से बढ़िया सात्विक कर्म है, यज्ञ, याग, अश्वमेध, तपस्या, उपासना, उसका भी संबंध अपने से कर लिया कि मैं कर रहा हूं, वह भी बंधन में डालने वाला हो जाता। एक शिष्य था बड़ा याज्ञाकारी, गुरु ने किसी से कहलवाया कि जाकर खबर करो कि गुरु जी तत्काल बुला रहे। उस समय वह शिष्य विवाह का सात फेरे लगा रहा था, सुना कि वही तीन फेरे के बाद ही चल पड़ा। पुरोहित ने रोका, सभी लोगों ने, अरे सात फेरे लगा के दुदा जा। बोले नहीं, पहले गुरु जी की आज्ञा। विवाह अधूरा रह गया, उसने बोला आऊंगा तब जाके सात फेरा लगाऊंगा, फिर विवाह होगा। वहां से चला जंगल की तरफ, रास्ता था गुजरते हुए, रात हो गई, एक जगह रुक गया। रुकने के बाद उसके मन में चिंतन शुरू हो गया, देखो मैं कितना बड़ा गुरु आज्ञाकारी, ईश्वर भक्त, गुरु ने आज्ञा दिया कि विवाह जैसे कृत्य को छोड़ कर गए और मैं तुरंत चल पड़ा। कितनी सुंदर हमारी पत्नी थी, पर हमने उसको भी छोड़ दिया, युवा भी छोड़ दिया, अभिमान आ गया। किसका अभिमान? त्याग का, गुरु आज्ञा पालन का, भक्ति बने का। गुरु जी ने कहा कि अभिमान आया तो पतन हो जाएगा। जहां ठहरा तो वहां पास में बिस्या की कुटिया थी, सोचा कौन देखता है, चलो चलते हैं। जैसे ही अंदर बढ़ता वैसे ही चौकीदार रोक देता, अभी कोई अंदर है बाद में जाना। ऐसे पूरी रात में चार पांच बार गया, चौकीदार रोक दे, बोले अभी कोई और अंदर है, प्रतीक्षा करो। प्रातः काल हुआ, वहां से गुरु जी के आश्रम में आया, गुरु जी सो रहे। उसने कहा गुरु जी हमारे 2 बजे उठने वाले, 7 बजे के अभी सो रहे। प्रतीक्षा किया। शिष्य ने कहा गुरु जी आपकी आज्ञा हुई मैं पधारा, कुछ तबीयत गड़बड़ है क्या कि आप सो रहे? गुरु जी ने कहा तबीयत गड़बड़ नहीं, मैं ही चौकीदार बनकर रात भर तुझे रोकता रहा, अब तो बेचारा शर्म के मारे नीचे हो गया। बोला गुरु जी की वहां भी पहुंच। गुरु जी बोले तुझे बड़ा अभिमान था ना, ईश्वर भक्ति का, वैराग का, ज्ञान का, गुरु आज्ञा का, अभिमान गल गया। तो देखो यदि सात्विक अभिमान भी हो तो अभी बंधन में डालता। इसीलिए कहा कि यद्यत कर्म, यद्यत दो शब्द लगाया, जो भी कुछ चाहे सात्विक हो राजस हो तामस, सारे कर्मों को जो परमात्मा में समर्पित कर देता है उसके सारे कर्मों के बंधन अभाव हो जाते हैं। कि कर्मक से तत्व याति स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। वही भाष्य में लिखा कि सत्वाद भी अन्वितानी, अन्वितानी का अर्थ है युक्त, सात्विक राजस तामस तीनों कर्म, भावाश्चत्यन विशेषण वियोजित, भावन मतलब विशिष्ट भाव से युक्त होकर। ऐसा नहीं कि भाई क्या करे, करना है, नियम ले लिया है अब तो करना ही पड़ेगा, इस तरह से नहीं, बल्कि श्रद्धा भक्ति भाव से करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब कोई उपासना करते कर्म करते तो बस एक आदत बन जाती है ना, मंत्र पूरे जब लेते सब कुछ हो जाता, परंतु राय भगवान की स्मृति नहीं, वैसा नहीं, बल्कि कहते भावपूर्वक श्रद्धा पूर्वक। इसके विषय में श्रीहर्ष कबीर ने खंडन खंड खाद्य के मंगलाचरण में दृष्टांत दिया, बच्चे का दिया कि नम्री भवान चंगरी चरणयोस्ते, वहां दृष्टांत दिया जैसे छोटा बच्चा बड़े स्नेह से मां के दोनों चरणों को पकड़ लेता है और रोता है कि मां गोद में उठा ले, शुद्ध भाव को देखकर मां सारा काम छोड़कर बच्चे गोद में उठा लेती, उस बच्चे कितना भाव कि मां को जबरन सारा कृत्य छोड़ना ही पड़ता। ऐसे ही पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने सारे कर्मों को समर्पित करके जो भी कुछ कर रहा हूं, नारायणाय तृप्यंताम, भगवान तृप्त हो, नारायण तृप्त हो, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। जब यज्ञ याग होता है तो आपको याद होगी बार बार विद्वान लोग कहते इदम न मामा, बोलते हैं ना, यह मेरा कुछ भी नहीं, सब आपका, आपको समर्पित है। इस दृष्टिकोण से करे, भावा चत्यंत विशेषान विनियोजित, ईश्वरे समर्पित समर्पित करे, तेषाम ईश्वरे समर्पितत्वात् आत्म संबंधाभावात् तदभावे पुरुकृत कर्मणां नाशः। जब उन कर्मों को ईश्वर में समर्पित कर देता है तो अपने से संबंध का भाव हो गया, और संबंध के अभाव होने से पुरुकृत कर्मों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार आपने बड़े परिश्रम से कोई बंगला खड़ा किया, छाता लगाकर धूप में खड़े होकर बनवाए, परंतु किसी ने कहा रे तुम्हारा मकान कितने का हो गया, बोले 2 करोड़ का, बोला ऐसा है मैं तुमको 4 करोड़ देता हूं, मुझे दे दो, खुद अभी ले लो। 4 करोड़ में आप जैसे ही वसीयत दूसरे के नाम लिख देते हैं, इसके बाद कोई मतलब नहीं। फिर आपको याद बनी आता कि मैं गर्मी के दिनों में धूप में छाता लगा खड़ा होकर बनवाया, 4 करोड़ लिए, बात खत्म। ऐसे ही चाहे कितना ही परिश्रम से हमने कुछ भी किया हो, अच्छे बुरे कर्म जब सब समर्पित कर दिया परमात्मा को कि मेरा कुछ भी नहीं, अब हमारे जीवन में केवल एक परमात्मा ही, तो अच्छे बुरे कर्मों का बंधन समाप्त हो जाता है। पूर्व कृत कर्मणाम नाशः उक्तं च, इसी बात को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान में सब कुछ अर्पण कर दो। अर्पण का मतलब जानते हैं ना, कैसे अर्पण करना? हाँ, कर्तापन का, यहां तक कि ये भगवान को समर्पण कर रहा हूं या अभिमान भी नहीं होना चाहिए। मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूं या अभिमान भी नहीं। तो यत् लिखा ना, यत् करोषि, जो भी करते हो, चाहे मन से करते हो, चाहे शरीर से, चाहे वाणी से, यदश्नासि, और जो हम भोजन आदि ग्रहण करते हैं, जोशी, जो हवन आदि करते हैं, वैसे जोशे में हु दाना दान्यो धातु है, जुवो त्यादि गण का, जो त्यादि गण मतलब भुआदि अदादि ज्योत्यादि, तीसरे नंबर का नंबर याद करना पड़ता, पहला भुआदि अदादि जुवो त्यादि। तो हु दाना दान्यो है, आप किसी को कुछ देते हो या लेते हो, दोनों अर्थ में है। वह सब कुछ परमात्मा में समर्पित कर दो। ददासी का अर्थ है कि व्यवहारिक जगत में जो देन लेन करते हैं, यत् तपस्यसि, जो आप तपस्या कर रहे, तपस्या हम सभी कर रहे, बल्कि हिमालय की कंदरा में बैठ कर जो एक तपस्वी तपस्या कर रहा है ना, उसकी तुलना में हम लोग अधिक तपस्या करते, पर तपस्या को तपस्या न समझने से उसके फल से हम वंचित हो जाते, ठगे जाते हैं। हिमालय कंदरा में बैठना, तपस्या करना तो बहुत आसान है, बहुत सस्ता है। वहां न कोई रूप की समस्या, न रस का, न गंध का, न स्पर्श का, न शब्द का, शांत माहौल है। परंतु यहां जो मुंबई बैठकर हम लोग तपस्या करते, इसमें रूप ग्राह मुख फाड़ के खड़ा है, चारों तरफ से एक रूप नहीं, हजारों रस भी, कभी दिल करता ये खा लो, कभी वो खा लो, गंध भी, स्पर्श भी, शब्द भी, इन सभी के बीच में बैठकर हम लोग महान तपस्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तो उपनिषद में कहीं आया है, भगवान शंकराचार्य कई बार इस श्लोक का उद्धरण देते हैं कि मनसश्च इंद्रियाणाम एकाग्र्यम परमं तपः तज्जाय सर्वधर्मेभ्यो स परम तप उच्यते। मन इंद्रियों की एकाग्रता,